तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सार्धजातं सह गणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशकारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट वीक ऑलमोस्ट फ्राइडे के बाद, थर्सडे के बाद से कोई मैंने क्लास नहीं दिया। कुछ कुछ अलग अलग सर्विसेज कंप्लीट करना था इसलिए, और साथ में कुछ कुछ असाइनमेंट थे क्योंकि मेरा अभी एक ट्रेनिंग चल रहा है, तो उस ट्रेनिंग के कुछ कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट करने थे, तो इस कारण से एक हफ्ते का गैप था टोटल। और लास्ट टाइम जब हमने किया था तो शायद हमने 5 क्वालिटीज डिस्कस की थी। 6th क्वालिटी हमारी चल रही थी, 26 वैष्णव के जो 26 गुण होते हैं उसमें से 5 हमने डिस्कस किए थे। छठवां गुण जो है वो डिस्कस करना शायद थोड़ा डिस्कस हुआ था या बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हुआ था, बट एनीवे हम उसको फिर से बिगिनिंग से चालू करेंगे। छठवां जो गुण है वैष्णव का वो है वदान्य। जैसे चैतन्य महाप्रभु के लिए ये श्लोक बोला जाता है, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। इस श्लोक का मीनिंग है कि चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय, महावदन्य मतलब सबसे ज्यादा, म्यूनिफिसेंट, म्यूनिफिसेंट का मतलब होता है जो कि सबसे ज्यादा उदार होते हैं, उदार का मीनिंग होता है वदन्याय। तो इसमें श्री रूप गोस्वामी की प्रार्थनाओं में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के लिए बताया था कि नमो महावदन्याय, आप जो है महावदन्याय है, सबसे ज्यादा उदार है, कृष्ण प्रेम प्रदायते। क्यों सबसे ज्यादा उदार है? क्योंकि आप सभी को कृष्ण का प्रेम प्रदान करते हैं, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। और रूप गोस्वामी बताते हैं कि आप स्वयं कृष्ण हैं और आपका नाम कृष्ण चैतन्य है, क्योंकि कृष्ण प्रेम कौन बांट सकता है? कृष्ण प्रेम इतना फ्रीली वो ही दे सकता है जिसके पास कृष्ण हो या जो स्वयं कृष्ण हो। तो वैदिक शास्त्रों के आधार पे चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण कहलाते हैं, इसलिए उनके बारे में बताया जाता है कि कृष्णाय कृष्ण चैतन्य। इसलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ नामने गौरत्व से नमः, ऐसे श्री गौरांग महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। तो वदान्य का अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो एक मीनिंग उदार आता है, एक और मीनिंग आता है जो कि मन और स्वभाव में बहुत निर्मल है, बहुत अच्छे हैं, और एक और मीनिंग आता है जो दूसरों को क्षमा करने में बहुत माहिर है, मतलब लोगों को क्षमा, हमेशा क्षमा कर देते हैं। और एक और मीनिंग आता है जो किसी भी बदले की भावना से रहित, उनके अंदर बदले की या क्रोध की भावना नहीं पाई जाती, बदला लेने की भावना नहीं पाई जाती। एक और मीनिंग आता है कि उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ मीनिंग होते हैं वदान्य, मैग्नानिमस के ये कुछ कुछ मीनिंग्स होते हैं शास्त्रों में जो आते हैं। तो ये सारे मीनिंग चैतन्य महाप्रभु के ऊपर लागू भी होते हैं। माई ऑबिसेंसेस इनटू लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हु इज द मोस्ट म्यूनिफिसेंट इनकार्नेशन, क्योंकि वो जो कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं वो सबसे ज्यादा उदार कहलाएंगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा मान सकता है कि जो व्यक्ति ज्यादा परमानेंट बेनिफिट देता है वो व्यक्ति टेम्परेरी बेनिफिट देने वाले से बड़ा होता है, जैसे टेम्प्रेरी असिस्टेंस के लिए हम सभी लोग कई बार ये उदाहरण सुन चुके हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि किसी धनी का अगर बेटा गुम जाता है तो उसको टेम्प्रेरीली कैसे मदद किया जा सकता है, उसको अपने साथ ले जाके उसको भोजन खिला के या उसको विश्राम करा के और कुछ दिन तक उसको अपने पास रख के, ये उसकी टेम्प्रेरी मदद है। परमानेंट मदद क्या कहलाती है? परमानेंट मदद कहलाती है कि उसको पूरी तरह से उसके पिता के पास पहुंचा देना, क्योंकि वो अपने पिता को भूलने के कारण दुखी है, तो उसको उसके पिता के पास पहुंचा देंगे तो वो सुखी हो जाएगा। तो ये जो मदद है उस खोए हुए बच्चे को अपने पिता के पास ले जाना, ये एक परमानेंट मदद कहलाती है और ये एक एटर्नल मदद कहलाती है। इस भौतिक संसार में जीवन, सभी लोगों को पता है कि इस भौतिक संसार में जीवन कष्ट कष्ट से भरा है, फुल ऑफ सफरिंग, कष्टप्रद है। और जो भी इस संसार के जीवन में जीवन से निकालने के लिए हमारी मदद करना चाहता है, उसको कई बार अच्छा व्यक्ति या समाज सेवा करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। परंतु इस संसार में अगर कोई व्यक्ति मदद करता है तो वो मदद ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, क्योंकि वो उसका इस संसार का नेचर इस प्रकार से है कि संसार की मदद ज्यादा दिन तक कार्य नहीं करती, क्योंकि संसार में हर वस्तु टेम्परेरी है, तो संसार की जो मदद होती है वो भी टेम्परेरी होती है। लोगों को लगता है कि हम स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, परंतु ये सब टेम्प्रेरी वस्तु है, स्कूल कॉलेज कोई परमानेंट हेल्प नहीं है। जैसे कुछ कुछ लोग तो मदद करते हैं, उनको पता ही नहीं होती कि वो मदद भी है कि क्या है। जैसे एक बार बड़ौदा में क्या हुआ था, मैंने चौराहे पे ऐसा बिल बोर्ड देखा था। क्या हुआ, एक व्यक्ति ने मदद करने के लिए बोला कि मैं 2,000 बच्चों को फ्री में ट्रेन का टिकट, नहीं ये एक कोई नई मूवी आई थी उस मूवी का टिकट मैं फ्री में दूंगा 2,000 स्टूडेंट्स को। तो ये कोई मदद है? ये कोई मदद नहीं, ये तो उनके लिए आप पाप का काम कर रहे हैं उनको बॉलीवुड की मूवी दिखा के। एक बार एक व्यक्ति बोल रहा था कि मैं 10,000 लोगों को मांस खिलाऊंगा, इस प्रकार से मैं दान दूंगा कि 10,000 लोग उसको मांस खा सकते हैं। तो लोगों को पता ही नहीं है कि मदद कहलाती क्या है। जो लोग मदद करके पाप में फंस जाते हैं, क्योंकि ये सारी मदद पापमय मदद है। तो कोई व्यक्ति भौतिक संसार में बहुत कम है कि परमानेंटली मदद कर पाए, क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के फल से फंसा हुआ है। हर व्यक्ति का अपना अपना बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में इस कर्मों का बैंक अकाउंट जो वो साथ में लेके आया है, बहुत सारे जीवन बहुत सारी लाइफ से अपने कर्मों का बैंक अकाउंट लेके आया है, और उस बैंक अकाउंट को कोई ज्यादा बदल नहीं सकता। इवन देवता लोग भी उसको ज्यादा नहीं बदल सकते। अगर हम देवताओं की पूजा करते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उस बीमारी को सही कर देता है, परंतु वो ऐसा नहीं कि वो दुख जिंदगी भर से चला गया, वो दुख कहीं ना कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। इसी तरह से देवता की पूजा करते हैं तो देवता आपके पूरा इस दुख को कम करके दूसरे दुख, इस दुख की जगह पे सुख दे देते हैं, और ये वाला दुख कोई दूसरे समय पर मिलता है। क्योंकि संसार के सुख दुख से बाहर निकालने की शक्ति किसी के पास नहीं है। भगवान विष्णु के अलावा कोई भी हमें पाप कर्मों से मुक्त नहीं कर सकता है। इवन देवताओं के खुद भी पुण्य पाप कर्म होते हैं, तो वो दूसरे को कैसे मुक्त करेंगे? तो इस संसार में जो जीवन है वो हमेशा एक जेल में जीवन के समान है। तो जेल में कई बार ऐसा हो सकता है कि व्यक्ति थर्ड क्लास जेल से सेकंड क्लास जेल में जाए, फर्स्ट क्लास जेल में जाए। जैसे थर्ड क्लास जेल होती है उसमें उसको बोलते हैं रिगोरस प्रिजन, उसमें कैदी से बहुत सारा काम कराया जाता है, उसके फैसिलिटीज बहुत कम होती है, छोटा सा कमरा होता है। जो जेल जितनी ज्यादा डिग्रेडेड होती है उतनी छोटी जेल होती है। तो बहुत एक संसार का जीवन स्टेट जेल के जैसा है, और इस जेल में अलग अलग फैसिलिटी हो सकती है। कुछ लोग हो सकता है देवता में, देवता लोग जो हैं वो स्वर्ग लोक में जेल में हैं, और हम लोग धरती में जेल में हैं, कुछ लोग नरक की जेल में हैं, परंतु हैं सभी के सभी जेल। देवता लोग स्वर्ग में है इसका ये मतलब नहीं कि वो जेल से बाहर आ चुके हैं, वो भी जेल में है। जेल से बाहर आना मतलब भौतिक संसार से बाहर आना, उसको जेल से बाहर आना बोला जाता है। तो एक तो प्रिजन का मतलब है, जेल में जब किसी को रखा जाता है तो एक तो उसका मतलब होता है कि व्यक्ति जो जेल में रहने वाले हैं उनके नॉर्मल नॉर्मल मूवमेंट को रोक दिया जाता है। इसी तरह से ये भौतिक संसार को डिजाइन किया गया है ऐसे लोगों को ट्रबल देने के लिए जो कि यहाँ पे आते हैं और भगवान से, भगवान को रिजेक्ट करके यहाँ पे आते हैं, उन लोगों के लिए भौतिक संसार डिजाइन किया गया है स्पेशली। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे कि जो भी इस संसार में है वो क्रिमिनल है, हम सभी लोग क्रिमिनल हैं, इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, हम सभी अपराधी हैं। बहुत आध्यात्मिक संसार में ओरिजिनल अपवाद करके हम यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अलग 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 प्रकार के जेल में, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास जेल में हम निवास करते हैं। So, जैसे हॉस्पिटल का एग्जाम्पल देखते हैं कि हो सकता है पेशेंट का बहुत स्ट्रिक्ट डाइट हो, परंतु अगर, या जैसे सपोज कोई हॉस्पिटल में कोई पेशेंट है तो उसकी डाइट चार्ट बहुत स्ट्रिक्ट है, वो ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, नहीं तो बीमार हो जाएगा। पर क्या होता है, वहीं पे एक व्यक्ति उसको देखने आता है, वो सोचता है कि इस व्यक्ति की तो मदद करनी चाहिए, तो मदद कैसे करेंगे, इसको अच्छा अच्छा खिलाना चाहिए, तो वो लाता है, वो फीस्ट उसको खिला देता है पेशेंट को, अच्छा मसाले वाला खाना ये सब खिला देता है, और उसको खाने के बाद फिर पेशेंट जो है वो व्यक्ति जो है वो तो मदद करने का सोचता है, बट उसकी मदद करने से पेशेंट जो है वो मरने के जैसा हो जाता है, और फिर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल से बाहर फेंक दिया जाता है जो मदद करने आया था, क्योंकि वो मदद करने आया था परंतु तो उसको पता नहीं था मदद कैसे करनी, क्योंकि उसको पता नहीं था कि पेशेंट के लिए जो फास्टिंग है वो उसको क्योर करने के लिए है। जैसे इसी तरीके का एग्जाम्पल हमने पहले एक बार डिस्कस किया था, एक बार एक छोटा बच्चा था, वो छोटा बच्चा सोचता था उसकी मम्मी उसको अच्छा खाने के लिए नहीं देती थी, क्योंकि बच्चे को बहुत ज्यादा डाइजेशन का प्रॉब्लम था, अगर उसको तेल और ये सब दिया जाता, तेल घी, तो बच्चे की मृत्यु भी हो सकती थी, इतना ज्यादा उसको डाइजेशन की समस्या थी, तो माँ उसको नहीं देती थी, परंतु बच्चे को खाने की इच्छा होती थी। तो एक बार माँ जब बाहर जाती है तो उसकी बड़ी बहन बोलती है, नहीं मैं तो बच्चे मेरे भाई की कितनी मदद करना चाहती हूँ, मेरी माँ उसको कुछ नहीं खिलाती है, तो वो बहन उसके लिए पूरी सब्जी कचौड़ी ये सब बना के खिलाती है, वो खाते ही साथ बच्चा बहुत बीमार हो जाता है, बाद में उसको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तो इस प्रकार की मदद जो है यूजलेस मदद कहलाती है, क्योंकि इस मदद का कोई मतलब नहीं है, इस मदद को करके हम उस व्यक्ति के जीवन से खेलते हैं। तो इसलिए भौतिक संसार में हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अंदर में है, इसलिए उस कर्मों के प्रवाह को कोई चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, वो ट्राई करे कितना भी परंतु कर्मों के प्रवाह को नहीं बदल सकता है, क्योंकि कर्मों को खत्म करना केवल भगवान के हाथ में, और कोई इस संसार में कर्मों से खेल नहीं सकता है या कर्मों को चेंज नहीं कर सकता है। हम केवल उस व्यक्ति की इतनी मदद कर सकते हैं कि हम उसको भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार की तरफ पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, कि किस प्रकार से व्यक्ति को हम आध्यात्मिक संसार से पहुंचाया जा सके। जो अच्छा काम करने का सोचते हैं वो भी प्रकृति के नियमों को नहीं जानते हैं, और अलग अलग तरीके से वो प्रकृति के नियमों से बचने की कोशिश करते हैं, परंतु उनके ये प्रभाव हमेशा डूब जाते हैं, क्योंकि ये प्रभाव कभी भी इफेक्टिव नहीं है इस संसार में। हम लोग हो सकता है चाहे कि हम लोगों का अच्छा करें, परंतु हमें पता नहीं कि लोगों का अच्छा कैसे करना है। उसी तरीके से जैसे वो बहन सोचती थी कि मैं तो अपने भाई का अच्छा करूंगी, उसको अच्छा अच्छा खिला के, परंतु उस भाई के लिए फास्टिंग ज्यादा अच्छा था। इसलिए हम लोगों को चाहते हैं कि हम पूरे संसार की मदद करें, सबके अंदर ये फीलिंग है कि हम सोसाइटी की मदद करें, परंतु नहीं पता है कि सोसाइटी की वास्तविक मदद कैसे की जा सकती है। हम सब लक्ष्य है, हम यहाँ क्यों आए हैं, तब तक हम किसी की वास्तविक मदद कर ही नहीं सकते। केवल शरीर की मदद करना वास्तविक मदद नहीं है, ऐसा नहीं कि वो मदद नहीं है परंतु वो परमानेंट हेल्प नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक मदद जो है वो सबसे ऊंची मदद कहलाई जाती है। जैसे एक जगह पे आता है भगवद गीता में, कोई व्यक्ति अगर नदी में डूब रहा है और नदी में डूबते हुए हम जाते हैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए, परंतु उस व्यक्ति को बचा के लाते हैं, फिर तो जब लौट के आके देखते हैं तो हम केवल व्यक्ति की शर्ट हमारे हाथ में है, व्यक्ति डूब गया, या हम व्यक्ति को बचाने जाते हैं फिर कभी सोचते नहीं उसकी शर्ट देखो कितनी कीमती है, शर्ट को बचाना चाहिए। तो ये मूर्खता वाला काम, डूबते हुए व्यक्ति को नहीं बचाना, उसकी शर्ट को बचाना, ये एक मूर्खता का काम है। इसी तरीके से जो लोग आत्मा को बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, केवल शरीर के लिए बचाने के लिए काम करते हैं, वो उसी तरीके से मूर्ख हैं जो कि व्यक्ति की शर्ट को बचाते हैं, व्यक्ति को नहीं बचाते। तो अभी अभी ये प्रश्न आता है कि किस प्रकार से हम ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, एटर्नली कैसे इसकी मदद की जा सकती है। ये एटर्नल मदद की जा सकती है भक्ति की पद्धति के द्वारा, भगवान कृष्ण की सेवा के द्वारा ये मदद की जा सकती है, इम्पर्सनल वस्तु के द्वारा, या व्यक्ति इम्पर्सनल को क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व तो अगर नहीं है, निराकार अगर हम मानते हैं तो हम लोगों की ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन से बताते हैं दूसरे अध्याय में, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिप न चैव न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। उसी श्लोक में बताते हैं कि हे अर्जुन, कभी भी ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं रहा हूँ, कभी भी ऐसा समय नहीं था जब तुम नहीं रहे हो या ये सभी लोग नहीं रहे, और कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा कि मैं नहीं रहूंगा। दैट मीन्स हम हमेशा उपस्थित रहेंगे, मैं भी तुम भी ये सभी लोग हमेशा उपस्थित रहेंगे। इसका मतलब है हमारी इंडिविजुअलिटी कभी खत्म नहीं होती है। मृत्यु के बाद हम दूसरा शरीर लेते हैं, इवन जब हम मुक्ति को प्राप्त होते हैं तब भी हम भगवान की सेवा के लिए हम अपने वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप में हमेशा उपस्थित रहते हैं। और दैट मीन्स इवन गोलोक वृंदावन में भी जब हम जाते हैं तब भी हम भगवान की सेवा के लिए हमारा सच्चिदानंद रूप में भगवान की सेवा करते हैं, परंतु उस सेवा में ये भौतिक शरीर जैसी नहीं होती है, क्योंकि वो हमारा आध्यात्मिक रूप है, वो हमारा वास्तविक रूप है जिस रूप में हम भगवान की वास्तविक सेवा करते हैं, उसी को वास्तविक मुक्ति भी बोला जाता है। हमारा नेचर है भगवान के दास, एक्चुअल हमारा आइडेंटिटी भगवान के दास के समान है, और जब हम आध्यात्मिक संसार में जाते हैं तो हम हमेशा भगवान के दास के समान सेवाएं करते हैं। इसलिए कई बार वैष्णव जो है अलग दूसरे मुक्तियों को पसंद नहीं करते, जैसे कुछ मुक्ति होती है, एक मुक्ति होती है उसको बोलते हैं ब्रह्म सायुज मुक्ति। ब्रह्म सायुज मुक्ति का मतलब होता है भगवान के शरीर में मर्ज हो जाना। इसी तरह से सामीप्य का मतलब होता है भगवान के समीप निवास करना। सारलोक के मुक्ति का मतलब होता है भगवान के लोक में निवास करना। साष्ठी का मतलब होता है भगवान के समान ऑपुलेंस प्राप्त करना। और सारूप्य भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना। परंतु वैष्णव लोग कई बार इन मुक्तियों के बारे में भी नहीं सोचते हैं, उनके लिए केवल भगवान की सेवा आवश्यक होती है, चाहे वो सेवा कहीं भी करें, चाहे इस संसार में करें चाहे भगवत धाम में करें। तो शुद्ध वैष्णव जो है केवल भगवान की सेवा से अटैच्ड होता है, जहां भी उसको भगवान की सेवा नहीं मिलती है वो उस चीज को नहीं मानता है। श्रीमद भागवत में ये आता है, एक श्लोक आता है, दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान कपिल देव अपनी माँ को बताते हैं कि ये चार प्रकार की मुक्ति मैं अपने भक्तों को देता हूँ तब भी वो स्वीकार नहीं करते। अगर उनको मुझे मेरी सेवा करने का मौका नहीं मिले तो वो इस मुक्ति को भी रिजेक्ट कर देते हैं, उनके लिए ये मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं। तो भक्त का वास्तविक स्थिति है भगवान की सेवा करना, चाहे वो किसी भी संसार में रहे। ब्रह्मा जी भी ये बताते हैं कि मैं चाहे इस संसार में रहूं चाहे कहीं भी रहूं, परंतु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा आपकी सेवा करता हूँ। तो वास्तविकता में जो उदार व्यक्ति होता है वो हमेशा इस भौतिक संसार से ज्यादा आकर्षित नहीं होता है। इस भौतिक संसार में जो कनकॉक्टेड आइडिया है सोशल सर्विस के, उनसे ज्यादा आकर्षित नहीं होता है। वो लोगों की मदद करता है आध्यात्मिक स्तर पर जाके। जैसे भारत में अलग अलग रिलीजन्स हैं, दुनिया में अलग अलग रिलीजन है, क्रिश्चियन मुस्लिम हिंदू, परंतु सभी रिलीजन में देखेंगे अगर आप रिलीजन के एसेंस को अगर देखेंगे तो उसमें भगवत प्रेम दिखाई देता है। कहीं ना कहीं बताते हैं कि लव ऑफ गॉड अचीव करना है, फिर चाहे वो होली ट्रिनिटी का डिस्क्रिप्शन हो चाहे अल्लाह का डिस्क्रिप्शन हो, परंतु ये चीज बहुत सारी रिलीजियस मैसेज में कॉमन रहती है। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रकार का भोजन है, चाइना में अलग भोजन है, अमेरिका में अलग भोजन है, परंतु इनका सार क्या है, भूख की तृप्ति करना। इसी प्रकार से सारे रिलीजन का कार्य है भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति करना। परंतु हर व्यक्ति तो बोलता है कि उसका रिलीजन बेस्ट है। इंडियन होते हैं बोलते हैं हमारा सबसे अच्छा है, मुस्लिम बोलते हैं हमारा सबसे अच्छा है, क्रिश्चियन बोलते हैं हमारा सबसे अच्छा है, हिंदू बोलते हैं कि हमारा सबसे अच्छा है। कैसे फैसला होगा कि कौन सा धर्म सबसे अच्छा है? ये बहुत कठिन क्वेश्चन है कि कैसे फैसला किया जाए कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। सभी लोग बोलते हैं हमारा धर्म सबसे अच्छा है। प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न किया गया था कि आप कैसे बता सकते हैं कौन सा धर्म सबसे अच्छा है। इसका उत्तर ऑलरेडी शास्त्र में दिया है, वो धर्म सबसे अच्छा है जो कि उस धर्म को जो पालन करता है उस व्यक्ति को भगवान का प्रेमी बना देता है। क्योंकि धर्म का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, तो कोई भी धर्म जो सिखाता है अपने अपने फॉलोअर्स को कि कैसे भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करना है, वो धर्म सबसे ऊंचा कहलाता है। और ये बात श्योर है कि जो भगवान को शुद्ध प्रकार से प्रेम करता है वो भगवान के अंश, भगवान के जो आत्मा पुत्र हैं, आत्माएं, उनको कभी भी दुख नहीं दे सकता। तो जो भगवत प्रेमी होता है वो कभी भी दूसरे को दुख नहीं देता है, दूसरे को मारता काटता नहीं या थोड़ा सा भी दुख नहीं देता है। तो उस तरह से हम समझ सकते हैं दुनिया में कौन सा धर्म सबसे बड़ा धर्म। अगर हम धर्म को टेस्ट भी करना चाहते हैं। पर केवल पैरामीटर यही है कि जो अपने फॉलोअर्स को पूरी तरह से चरित्र में अच्छा बनाता है और भगवत प्रेम के शुद्ध स्तर तक लेके जाता है, उस धर्म के सिद्धांतों को पालन करने से व्यक्ति शुद्ध भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार से आता है। और ये भगवत प्रेम किस प्रकार से होना चाहिए, इस भगवत प्रेम में दो लक्षण होना चाहिए। दो लक्षण है, अहेतुकी और अप्रतिहता। मीनिंग अहेतुकी मतलब उसके पीछे कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि हम ये करेंगे तो इसको करने से हमें ये मिलेगा, ये मोटिव नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं स्वार्थ। किसी भी संबंध के बीच में अगर स्वार्थ होता है तो वो संबंध ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, वो स्वार्थ उसको कमजोर कर देता है। और निस्वार्थता हर संबंध को स्ट्रांग करती है। जितने हम सेल्फलेस होते हैं उतना हम उस संबंध को, वो संबंध हमें ज्यादा अच्छा होता है। तो भगवत प्रेम में भी निस्वार्थ होना चाहिए। भगवान के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हमें कुछ नौकरी चाहिए या पैसा चाहिए, पत्नी चाहिए, फैमिली, और अमेरिका जाना है, हमारा R1 वीजा बनना है, अमेरिका के सिटीजन बनना है, ये सब, इन सब चीजों के भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। भगवान के पास जाना अहेतुकी, विदाउट सेल्फ, विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट। और दूसरा अप्रतिहता। अप्रतिहता मतलब भगवत प्रेम का भी रुकता नहीं है। जैसे भारत में एक चीज बहुत कॉमन है, अलग अलग व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग वैभव लक्ष्मी व्रत करते हैं, फिर कुछ लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं, कुछ लोग हर छठ करते हैं, तीज करते हैं, ऋषि पंचमी, संतान सप्तमी, क्या क्या बहुत सारे व्रत होते हैं। और उन व्रत के बाद उद्यापन किया जाता है। उद्यापन मतलब जैसे 16 सोमवार किया, 16 सोमवार के बाद फिर 17वें सोमवार को हम उद्यापन कर देते हैं। तो ये जो भक्ति है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का अंत हो जाता है। जबकि भगवत भक्ति अप्रतिहता, भगवत भक्ति कभी रुक नहीं सकती, हमेशा चलती है। कोई बोलता है आप भगवान कृष्ण की भक्ति कब तक करोगे, उससे बोलो पूरी जिंदगी करेंगे। बोलता है ठीक है, उसके बाद आध्यात्मिक संसार में जाओगे तो क्या करोगे, नहीं वहां भी भक्ति करेंगे। तो ये भक्ति एटर्नल प्रोसेस है, क्योंकि यही हमारा रूप है। आत्मा हमेशा से भगवान की इस प्रेम और भगवान की सेवा करता है। इस संसार में आने के बाद हम प्रेम और सेवा से भागते हैं। थोड़ा हमें कुछ करने के लिए बोल दिया जाए तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं। लोगों को अगर भगवान की सेवा के लिए बोलो तो लोग बहुत अलग अलग सिली सिली बहाने बनाते हैं। इस संसार में आप देखिए, लोग अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत काम करते हैं, परंतु तो भगवान की सेवा के लिए ज्यादा नहीं करते। जैसे एक बार एक मंदिर में, कई बार बहुत सारे मंदिरों में ऐसी कार डोनेट करने के लिए आती है जो कार हर व्यक्ति ने हर जगह से यूज कर ली, ठोक बजा के पूरा खराब करके उसको फिर रिपेयर करके मंदिर में दान दे देते हैं। तो एक बार हमारे एक मंदिर में एक कार प्रदान की गई, एक बड़ी सी कार थी एक्चुअली, 7-8 सीटर। तो वो कार देखने में बहुत अच्छी लगती थी। व्यक्ति आया, बोलते हैं हम आपके मंदिर के लिए स्पेशली ये कार लेके आए, और ठीक है उसको रखा आपने। दूसरे दिन जब कार को ले जाने की बारी आई तो कार को चालू किया, पहले एक तो धक्का मार के चालू किया, धक्का मार के कार चली 100 मीटर 200 मीटर चली होगी, फिर बंद हो गई। फिर उसको चला रहे हैं, जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो परेशान हो रहे हैं, फिर किसी से मदद मांगी, फिर धक्का मांगा, फिर कार 200 मीटर चली, फिर बंद हो गई। उसको फिर ले गए गैराज में, तो उसने बोला, ये जो गैराज का व्यक्ति था, ये आप उसने बोला ये कार आपको किसने दिया है, ये कार की कोई सब एज खत्म हो चुकी है, इसका इंजन भी खत्म हो गया है, ये कोई काम की नहीं। तब पता चला कि वो व्यक्ति 10 साल 15 साल से कार यूज कर रहा था। जब वो कार एकदम थर्ड क्लास हो गई तब उसने सोचा अभी हमारे काम की नहीं है तो मंदिर में दे देते। तो इन जनरल लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि हम अपना सबसे अच्छा उपयोग कर लेंगे। अपने शरीर को भी हम ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हम जवान है, अभी तो खूब मजे करना है और बहुत पाप करेंगे, मजे करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब फिर हम देखेंगे। भक्ति व्यक्ति तो बुढ़ापे का काम है। ज्यादातर लोग भारत में यही सोचते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे की काम है, अभी तो मजे करना चाहिए, भक्ति बुढ़ापे में करेंगे, जब दांत टूटने लगेंगे, जब हाथ पैर नहीं चलेंगे तब देखेंगे भक्ति करेंगे। परंतु वैदिक शास्त्र बताते हैं कि जब अभी नहीं कर पा रहे तो बुढ़ापे में कैसे करेंगे, जब शरीर चल रहा है तब तो नहीं कर पा रहे, जब शरीर नहीं चलेगा तो फिर कैसे करें। तो इसलिए भगवत भक्ति के दो लक्षण होते हैं, अहेतुकी अप्रतिहता। उसके पीछे कोई कारण नहीं होना चाहिए और वो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, अप्रतिहता, हमेशा उसको चलना चाहिए एटर्नल समय तक। इसलिए लोग कई बार भक्ति से डर जाते हैं, कुछ समय तो करेंगे पर एटर्नली कैसे करेंगे, इतना आसान नहीं है एटर्नली करना। वह जब शुद्ध कृष्ण प्रेम होता है कोई भक्त भगवान को प्रेम इसलिए नहीं करता है कि उसको भगवान कुछ भोजन देंगे, कुछ खाने के लिए देंगे, इसलिए नहीं करता है, या इसलिए नहीं करता है कि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हम स्वर्ग लोक पहुंच जाएंगे। शुद्ध भक्त जो है भगवान की भक्ति केवल भगवत प्रेम के कारण करता है। जैसे माँ जब बच्चे को प्रेम करती है तो माँ ये नहीं सोचती कि ये बच्चा मेरे लिए क्या करेगा, माँ नेचुरली प्रेम करती है बच्चे के लिए। इसी प्रकार से भगवान जब हम प्रेम करते हैं या शुद्ध भक्त जब भगवान को प्रेम करते हैं तो उसके पीछे कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता। भगवान कृष्ण का नाम ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान और सबसे ज्यादा आकर्षक भगवान है, इसलिए जब कोई भक्त भगवान के सुंदरता से आकर्षित होना प्रारंभ होता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला से आकर्षित होता है, तो वो सारे सारी वस्तुओं के कंसिडरेशन भूल जाता है और केवल अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में लगा जाता है। जैसे ध्रुव महाराज भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे, और किस लिए तपस्या कर रहे थे? ध्रुव महाराज कोई शुद्ध भक्ति के लिए तपस्या उस समय नहीं कर रहे थे, उनको ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य चाहिए था, क्योंकि उनकी इंसल्ट हो गई थी, उनकी माँ ने उनकी इंसल्ट की थी, इसलिए उनको ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बड़ा राज्य चाहिए था। तो जब परंतु जब ध्रुव महाराज के सामने भगवान उपस्थित हुए तो ध्रुव महाराज ने जब भगवान को देखा तो उनके मन से वो इच्छा चली गई। उन्होंने बोला कि अभी मैंने आपको देख लिया है तो और मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं, मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। इस तरह से ध्रुव महाराज बताते हैं और साथ में बोलते भी हैं, स्वामिन कृतार्थोऽस्मि वरं न याचे। मैं तो सोच रहा था कि मैं कुछ कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, परंतु आप मुझे पता नहीं था कि मेरे पास तो ऑलरेडी ये जेम्स ज्वेल्स हैं। तो भगवान का दर्शन जो है वो सबसे ऊंचा है। भगवान ब्रह्मा जी से बताते भी हैं कि मेरा जो दर्शन तुम्हें प्राप्त हुआ है इससे बड़ा गिफ्ट और कोई नहीं है इस संसार में। मेरा दर्शन प्राप्त करना, मेरी कृपा प्राप्त करना, इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं। तो जब कोई भक्त भक्ति करते हैं भगवान की और भगवान की कृपा जब उनके ऊपर होती है, तब फिर उनको इस संसार की और कोई चीज गिफ्ट की आवश्यकता नहीं होती है, फिर वो भगवान के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं। और जब कोई भक्त केवल भगवान की सेवा करना चाहते हैं तब वो भगवान के धाम जाने के लिए क्वालिफाइड होते हैं। और ये इस प्रकार के शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना ही सारे धर्मों का सार है। चाहे आप किसी भी धर्म को देख लें, ये शुद्ध कृष्ण प्रेम जो है ये सबसे ऊंचा स्तर है आध्यात्मिक संसार आध्यात्मिक जीवन का सबसे ऊंचा स्तर है शुद्ध कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। और धर्मों में जो डिफरेंसेस दिखाई देते हैं वो कई बार इस प्रकार दिखाई देते हैं क्योंकि उनके फॉलोअर्स धर्म की इन शिक्षाओं को नहीं देख पाते हैं और छोटे छोटे जो धर्म में डिफरेंस होते हैं उसके कारण उनको नहीं समझ पाते हैं। और क्योंकि भगवान की शुद्ध शिक्षाएं कभी भी नहीं बदली जा सकती हैं और जो व्यक्ति सिंसियर है उसके लिए वो शिक्षाएं हमेशा ओपन होती है। भगवान ने गीता में बोला भी है 18वें अध्याय में 55वें श्लोक में 55, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्व था ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान बताते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, बाई भक्ति आई कैन बी अंडरस्टूड, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे समझा जा सकता है। यावान यश्चास्मि तत्वतः, और जो व्यक्ति भक्ति करता है वो मुझे तत्वतः एज इट इज मुझे समझ सकता है। ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, इस प्रकार से तत्व से मुझे जानने के बाद विशते तद अनंतर वो व्यक्ति मुझ अनंत को प्राप्त होता है। और भगवान गीता में बताते भी हैं कि अगर आप मुझे सरेंडर करेंगे तो मैं आपको मुक्त कर दूंगा। और चैतन्य महाप्रभु आके उन शिक्षाओं को और भी आसान बना देते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान कृष्ण बोलते हैं सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, तो कलयुग के लोग डर जाते हैं। कलयुग के लोगों का यह है कि अगर आप उनको छोड़ने की बात बोलो तो बहुत डर जाते हैं, उनको लगता है क्या छोड़ना है, नहीं छोड़ना बहुत मुश्किल है कलयुग के लोगों के लिए। तो भगवान कृष्ण ने तो बोला था कि सब कुछ छोड़ के मेरे पास आओ, तो लोग डर जाते हैं कि नहीं सब कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आके ये नहीं बोलते कि आपको सब कुछ छोड़ना है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं आप केवल हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ लो अपने जीवन में, और कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, पर हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ लो, बाकी सब चीजें जिस जो छूटना होगा वो छूट जाएगा हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति से। तो भगवान कृष्ण जो डिमांड करने के लिए आए थे उस डिमांड को पूरा करने के लिए हम तैयार नहीं थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो फिर से आते हैं और हमें फिर से शिक्षा देते हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण को सरेंडर करना है। और वैदिक शास्त्र बताते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है, परंतु इस अवतार में चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो आते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में आते हैं। और श्रीमती राधा रानी के भाव में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं। राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी का भाव, श्रीमती राधा रानी का भाव है भगवान कृष्ण को प्रेम करना, उस भाव को और उनकी द्युति, उनके शरीर की कांति, उनके शरीर के रोशनी, उसको स्वीकार करते हैं और उस रूप में इस संसार में आते हैं और सिखाते हैं कि किस प्रकार से शुद्ध भक्त को भगवान की सेवा करनी चाहिए। अपनी भक्ति अपनी सिखाई प्रभु, चैतन्य चरितमृत में एक श्लोक आता है, किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु खुद भक्ति करके दूसरों को सिखाते हैं। प्रभुपाद जी उसका उदाहरण देते हैं। कई बार टीचर जो PhD वाला टीचर होता है, वो भी जब कभी फर्स्ट क्लास के बच्चे को पढ़ाता है, पहली क्लास के बच्चे को, तो पहली क्लास के बच्चे के जैसे ही पढ़ाता है, वो हाथ में चौक लेके सिखाता है, आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, इस प्रकार से बना के सिखाता है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि वो व्यक्ति उतना ही जानता है। इसी तरह से भगवान जब भक्त के रूप में आते हैं तो भक्ति करके हमें सिखाते हैं, परंतु भगवान तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो सब कुछ जानते हैं। तो चैतन्य वहां पर उसी तरह से शुद्ध भक्त के रूप में आते हैं और हमें सिखाते हैं कि शुद्ध भक्ति कैसे कैसे की जाए। और चैतन्य महाप्रभु सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं अनकंडीशनली। चैतन्य महाप्रभु के अवतार के पहले किसी भी कोई भी रिलीजियस टीचर ने भगवत प्रेम को इतनी उच्च अवस्था तक प्रदान नहीं किया था। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि किस प्रकार से भगवान और हमारा संबंध नित्य है और किस प्रकार से कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जाए। कृष्ण प्रेम एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु के पहले अवेलेबल ही नहीं था। इवन जो लोग भक्ति करते थे वो भी वैकुंठ जाते थे, भगवान नारायण की भक्ति करते थे, नारायण की सेवा करते थे, परंतु चैतन्य महाप्रभु का जो स्वभाव है, कृष्ण प्रेम जो उन्होंने सिखाया, वो कृष्ण प्रेम अभूतपूर्व था, इसके पहले कभी नहीं सिखाया गया था। चैतन्य महाप्रभु के पहले आने के पहले भगवान को या तो निराकार जैसा समझा जाता था, या पिता जैसा, या पालक के जैसा, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि भगवान को 5 प्रकार से प्रेम किया जा सकता है। शांत रस में भगवान को प्रेम किया जा सकता है, जिसमें भगवान को ध्यान करते हैं। उसके बाद दास्य रस में, जिसमें भगवान को अपने मालिक के जैसा मानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसके बाद साख्य रस में, जिसमें भगवान को मित्र जैसा मानते हैं। उसके बाद वात्सल्य रस में, जिसमें भगवान को अपने माता पिता जैसा मानते हैं। उसके बाद माधुर्य, जिसमें भगवान को हम अपने प्रेमी के समान मानते हैं। ये चैतन्य महाप्रभु ने रस बताए। इसमें भी उन्होंने बताया कि सबसे ऊपर जो रस है वो श्रीमती राधा रानी और गोपियों का संबंध है, और ये संबंध जो है आध्यात्मिक जीवन का सबसे ऊंचा लक्ष्य है, जिसके लिए सारे लोगों को प्रयास करना चाहिए इस सबसे उच्च अवस्था को प्राप्त करने का। तो इस तरीके से एक भक्त अपने जीवन के सारे क्रियाकलापों को भगवान कृष्ण, जो कि पूर्ण प्रेम के सागर हैं, उनके प्रति भक्ति प्राप्त करने के लिए डेडिकेट कर सकता है। और भगवान श्री कृष्ण, जो कि सभी सभी रसों के स्त्रोत हैं, वो जो भक्त उनके पास आता है उस प्रकार से उसको रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्य हम। जिस प्रकार से जो व्यक्ति उनके पास आता है उसी प्रकार से उसको वो रेसिप्रोकेट करते हैं। और ये रस का जो विज्ञान है, ये हम आध्यात्मिक गुरु शिष्य संप्रदाय में सीख सकते हैं। और जो व्यक्ति भगवत प्रेम को जानता है आध्यात्मिक गुरु शास्त्रों के द्वारा, उससे हम इस भगवत प्रेम को सीख सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने इस भगवत प्रेम को कोई नई तरीके से नहीं बताया, या कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई नई चीज इन्वेंट की। ये भगवत प्रेम हमेशा से शास्त्रों में था, परंतु लोग भूल गए थे। उसको चैतन्य महाप्रभु ने बताया। चैतन्य महाप्रभु का ये यूनिक कंट्रीब्यूशन था कि गोलोक वृंदावन का जो प्रेम है वो हम सभी के पास पहुंचाया। चैतन्य महाप्रभु आते हैं कलयुग में, जो कि 5,000 साल पहले निकल चुकी है और अगले 4,32,000 साल तक चलती रहेगी। और सारे के सारे युगों में कलयुग सबसे ज्यादा डिग्रेडेड युग माना जाता है। कलयुग में जो जीव होते हैं वो भी सबसे ज्यादा डिग्रेडेड होते हैं। तीनों युगों में जो अपने जीवन को परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनको कलयुग में रखा जाता है। तो ये बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब हम कभी भी घमंडी नहीं होंगे। जिसको भी अपने ऊपर घमंड आए उसको समझ देना चाहिए कि हम रिजेक्टेड माल हैं। 3 बार हमें रिजेक्ट किया गया। सत्ययुग में भी हम भगवान के पास नहीं जा पाए, द्वापर में भी नहीं जा पाए, त्रेता में भी नहीं जा पाए, और अभी कलयुग में फंसे हुए। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए भगवान स्वयं आते हैं और स्वयं आके सबसे ऊंचा गिफ्ट हमें प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत में जो बताया जाता है, चैतन्य महाप्रभु सबसे ज्यादा मैग्नानिमस हैं और भगवत प्रेम जो कि सबसे ऊंची वस्तु है उसको प्रदान करते हैं। पहले के समय में भी जब कंडीशंस बहुत अच्छी थी तब भी चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन मूवमेंट प्रेजेंट नहीं था, परंतु कलयुग के लोगों के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट है। ये इस प्रकार से है कि कोई व्यक्ति दुनिया में सबसे गरीब है उसको दुनिया में सबसे अमीर बना दिया जाए। कलयुग के लोग सबसे थर्ड क्लास हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको गोलोक वृंदावन का प्रेम प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। इसको बोला जाता है सबसे बड़ी उदारता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु को संसार में सबसे ज्यादा उदार बोला जाता है, महावदन्य, महावदन्य अवतार बोला जाता है। और चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार से लोगों को प्रेम और सरेंडर करना सिखाया, भगवान सिंपल, बहुत सिंपल है, भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके उन्होंने सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया कि भगवान के नाम का जो जप है उसके रूप में भगवान स्वयं आते हैं, और इसलिए कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है केवल उनके नाम का जप कर। और चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया भी कि भगवान के नाम के पूरे प्रभाव के लिए व्यक्ति को एक शुद्ध जीवन जीना चाहिए और बिना अपराध के नाम जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने समय के सबसे बड़े दो पापियों को बचाया, जगाई मधाई को। हमने पहले की क्लासेस में डिस्क्रिप्शन देखा भी था कि चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु को भेजा था जगाई मधाई का उद्धार करने के लिए, और जगाई मधाई को चैतन्य महाप्रभु ने शुद्ध भक्त बनाया, हमें डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए बनाया कि इतने बड़े पापी लोग भी सुधर सकते हैं। दैट मीन्स सभी के लिए हो। एक सॉन्ग में आता है, दीन हीन जत छिलो हरि नाम उद्धारिल तार साक्षी जगाई मधाई, कि संसार में जितने भी दीन हीन है वो हरि नाम के द्वारा उनका उद्धार हो सकता है। और इसका क्या साक्षी है, इसके साक्षी है जगाई और मधाई नाम से जो दो भाई है वो इसके साक्षी है। अगर वो लोग सुधर सकते हैं तो सभी के लिए होप है। और चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से भक्ति की पांच पद्धतियां बताई हैं। सबसे पहला है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, दूसरा है धाम में वास करना, तीसरा है भगवद गीता का पठन करना, भगवद गीता और भागवतम का पठन करना, चौथा है भगवान के विग्रह की सेवा करना, और पांचवा है भगवान के भक्तों का संग करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इन पांच चीजों को याद कर सकते हैं। भक्ति के सबसे पांच प्रमुख अंग कहलाते हैं ये। सबसे पहला हरे कृष्ण महामंत्र का जप, दूसरा धाम में निवास करना, तीसरा भगवद गीता या भागवतम का पठन करना, चौथा विग्रह की सेवा करना, पांचवा भक्तों के संग में रहना। पांचों हम कर सकते हैं। भगवत धाम में रहना मतलब भगवान, भगवत धाम उस जगह को बोला जाता है जहां पे भगवान की सेवा की जाती है। हो सकता है हम सभी के लिए वृंदावन जाके रहना पॉसिबल नहीं हो, परंतु हम अपने घर में भगवान की सेवा अगर करेंगे तो हमारे घर में हम वृंदावन धाम का उदय कर सकते हैं। भगवत गीता भागवत करना, हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, भगवान की सेवा करना, भक्तों का संग करना, ये अगर हम करेंगे तो भक्ति के पांचों आइटम बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनके प्रति आकर्षण से किसी, इनमें से किसी एक के प्रति भी अगर विशेष आकर्षण है तो हमारे अंदर शुद्ध भक्ति जागृत हो सकती है। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र का जप करना और कृष्ण भक्ति की प्रोसेस में बने रहना चैतन्य महाप्रभु की गिफ्ट है। और उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बताया बहुत सारी बुक्स लिखने के लिए और इस पद्धति का प्रचार करने के लिए जिससे कि संसार के लोग इसको पहचान सके। जैसे चैतन्य महाप्रभु के एक साथ के एक भक्त थे, उनका नाम था सार्वभौम भट्टाचार्य। ये सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति के इनकार्नेशन, बृहस्पति के अवतार हैं। उन्होंने एक प्रार्थना लिखी थी चैतन्य महाप्रभु के लिए, वो प्रार्थना बहुत अच्छी है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेक पुर सब पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपां बुधे यस्तम अहम प्रपद्ये। इस प्रार्थना में बताया जाता है वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं वैराग्य विद्या मतलब साइंस ऑफ डिटैचमेंट, वैराग्य का ज्ञान जो है वो वास्तविकता में निज भक्ति योगा। भगवान कृष्ण की भक्ति को वैराग्य विद्या बोला जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण की भक्ति अगर हम करते हैं तो भौतिक संसार के जितने भी पाप कर्म है उन चीजों से हमारे वैराग्य हो जाता है, अलग से उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जैसे हम भगवत भक्ति करते हैं तो भक्ति की शुद्धता के कारण संसार के जो भी कलमस हैं, जो भी बुरी हैबिट्स हैं, वो सारी हैबिट्स का विनाश हो जाता है। शिक्षार्थम एकम पूर्व सब पुराण, इस वैराग्य विद्या की शिक्षा जो है वो संसार में सबसे पुरानी है। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी, वही भगवान जो भगवान विष्णु है वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृपां बुधे यस्तमहं प्रपद्ये, वो चैतन्य महाप्रभु कृपा के सागर हैं और ऐसे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु के लिए लिखा गया है कि उन्होंने अपनी खुद की भक्ति को सिखाने के लिए संसार में आए और संसार में आके अपनी कृपां बुद्धि, बुद्धि कृपा के समुद्र के द्वारा हम सब हमारा सबका उद्धार किया। आध्यात्मिक गुरु जो है उसी कृपा के समुद्र से कृपा का जल लेके हमारे ऊपर बरसाते हैं, इसलिए हम गाते भी हैं संसार दावा नल लीड लोका तृणाय कारुण्य घनानत्व प्राप्त कल्याण गुणान वस्य वंदे गुरु से शरणागत। आध्यात्मिक गुरु उस बादल के समान है जो कि कृपा के समुद्र में से कृपा रूपी जल लेके आके हम सभी के ऊपर गिराते हैं, क्योंकि हम सभी समुद्र से दूर हैं इसलिए समुद्र का जल बादलों के द्वारा आके हमारे ऊपर गिरता है। तो आध्यात्मिक गुरु जो है, दीक्षा गुरु जो है, शिक्षा गुरु जो है, वो हमारे लिए उस बादल के समान है जो कि कृपा के समुद्र से हमें जल लेके हमारे पास आते हैं। चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक के दो मेन फीचर हैं जिसमें बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु को सबसे पहले तो वैराग्य विद्या के शिक्षक बोला गया है और शरणागति के शिक्षक बोला जाता है। चैतन्य महाप्रभु के साथ अलावा जितने भी आध्यात्मिक शिक्षक हैं वो भी बताते हैं कि हम इस भगवान को शरणागति प्राप्त करके हमें भगवत धाम प्राप्त करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु का मेथड ऑफ वैराग्य क्या है, किस प्रकार से वो वैराग्य लेने का बोलते हैं, उनका मेथड ऑफ वैराग्य है भगवान कृष्ण का नाम जप करना और डांस में, भगवान के कीर्तन में डांस करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग, ये चैतन्य महाप्रभु का वैराग्य का फॉर्मूला है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, चैंटिंग डांसिंग और फीस्टिंग, ये अगर करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का सब कुछ कार्य हो जाता है। और यही सेम प्रोग्राम जो कि चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले बताया था, यही प्रोग्राम अमेरिका में श्रील प्रभुपाद 1965 में लेके गए और उसको पूरी धरती पर उन्होंने फैलाया, जो कि इस्कॉन के नाम से आज भी पूरे संसार में फैल रहा है। और ये इस्कॉन सोसाइटी जो है, ये पूरे संसार में चैतन्य महाप्रभु का जो 500 साल पुराना मैसेज है उस मैसेज को पूरे संसार में भेजते हैं। प्रभुपाद की पुस्तकें उसका प्रमाण है, जो भी प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ते हैं वो कृष्ण प्रेम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने अपने गुरु के आदेश के ऊपर पूरी श्रद्धा और चैतन्य महाप्रभु के आदेशों के ऊपर पूरी श्रद्धा करने से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को और उनके गुरु की शिक्षाओं को बिना परिवर्तित किए हुए बांटा। और उसका प्रभाव था कि चैतन्य महाप्रभु कि जैसे प्रभुपाद जहां जहां गए पाश्चात्य देशों में वहां वहां कुछ सफलता मिली। प्रभुपाद को लगता था कि वो तो बहुत वृद्ध हैं, बहुत बुढ़े हो चुके हैं, पता नहीं वो कितना जिएंगे, कितनी सफलता मिलेगी, परंतु उनकी सोचने से भी ज्यादा प्रभुपाद को सफलता मिली। और इसलिए श्रील प्रभुपाद हमेशा तैयार थे कृष्ण इतनी वृद्ध अवस्था में भी कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। 13 बार उन्होंने पूरे वर्ल्ड के चक्कर लगाए और पूरे इतने सारे पुस्तकों को रात में जाग जाग के लिखा, इतने सारे मंदिरों को खोला, केवल इसी कारण इसीलिए जिससे कि पूरे संसार का ये भला हो सके। और चैतन्य महाप्रभु का जो वदन्य मूड था, उदार का मूड था, वही मूड श्रील प्रभुपाद ने अपने ऊपर इम्बाइब किया और उस मूड के द्वारा हमें ये शिक्षा प्रदान की। ओके, तो किसी को कोई प्रश्न पूछना है
सर
आज? हाँ यस दिव्यमान बताओ।
गोपी की तरह कृष्ण को प्रेम कैसे करें?
गोपी की तरह कृष्ण को प्रेम करना है तो उसके लिए आपको हमेशा ये सोचना होगा कि भगवान कृष्ण को किस चीज से खुशी मिलती है। जो चीज से उनको खुशी मिलती है वो कार्य करना होगा। भगवान को खुशी मिलती है उनका नाम लेने से, भगवान को खुशी मिलती है उनके शास्त्र पढ़ने से, उनके भक्तों की सेवा करने से, उनका प्रसाद खाने से, उनका कीर्तन करने से, उनकी बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से। तो जो काम भगवान को अच्छा लगता है वो काम करेंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे। ओके, और कोई प्रश्न?
हाँ हाँ सर।
हाँ बताओ
सर। जैसे सर जैसे वो कृष्ण भगवान को सबसे ज्यादा जैसे सर जैसे कृष्ण भगवान सर्वशक्तिमान है तो हाँ। उनको वो अपने धाम में रहते हैं
हाँ।
तो उनको जल्दी से जल्दी कैसे प्राप्त करूं, कोई भी त्याग हो कर दूंगा त्याग।
आप फिलहाल 16 माला कर रहे हैं ना?
हाँ जी
16 माला करते रहिए और भगवत गीता पढ़िए हर दिन, और मेरे संपर्क में रहिए, क्लासेस में आते रहिए। धीरे धीरे पता चलेगा कि किस प्रकार से भगवान को जल्दी प्राप्त करना है। अभी आपकी उम्र भी बहुत कम है क्योंकि आप 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। अभी स्टडी कंप्लीट करिए और ये 16 माला भगवत गीता का पाठ, भगवान का प्रसाद स्वीकार करना और भक्तों के संग में रहना। क्योंकि आपके घर के आसपास कोई मंदिर नहीं है, वो एक चीज है, इसलिए आप ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं वो अटेंड कर सकते हैं। आपको ऑलरेडी मेरे मैसेज मिल जाते हैं क्लासेस के ना,
हाँ जी
तो ये क्लासेस अटेंड करते रहो। और कभी अगर हम यात्रा पे जाएंगे तो आपसे मिलेंगे, आपके घर के पास से जाएंगे तो, और कंटिन्यू करो ये चीजें। उसके बाद फिर जब आपका उम्र हो जाएगा 1-2 साल बाद, उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है,
सर, अभी से करनी है भक्ति, पढ़ाई भी साथ साथ में कर लूंगा पर ज्यादा भक्ति करनी है।
हाँ अभी से करिए ना, इसीलिए मैंने बताया 16 माला करिए, गीता पढ़िए और ये लेक्चर सुनिए, ऑनलाइन क्लासेस सुनिए, यही भक्ति है। और भगवान को भोग लगा के प्रसाद लीजिए,
सर
ये भक्ति
जैसे
का।
चैतन्य
हाँ
महाप्रभु नाचते नाचते भक्ति करते थे, तो
हाँ
वैसे भक्ति कैसे करें?
उसके लिए आपको इस्कॉन मंदिर में जाना होगा। आसपास कोई इस्कॉन मंदिर है वहां जाइए, और शाम के समय कीर्तन होता है, उसमें जितना नाचना उतना नाचिए, आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे। और नहीं तो आप बड़ौदा आइए समय निकाल के, कोरोना खत्म होने के बाद बड़ौदा आइए 3-4 दिन के लिए, तो हम बहुत डांस करेंगे। हमारा नगर संकीर्तन होता है, तो वहां पे चेतन महाप्रभु के जैसे ही डांस करते हैं। अकेले तो डांस करना मुश्किल है, घर पे कहाँ डांस करेंगे, किसके साथ डांस करेंगे,
सर
मंदिर में आके
वो
डांस कर सकते हैं।
कीर्तन करते हैं तो फिर डांस होता
हाँ कर सकते हैं, अकेले भी ट्राई कर सकते हैं, बट जब भक्तों के संग में आएंगे तो अच्छा होगा। उसके लिए आप मंदिर आना, मंदिर आ सकते हैं,
है। सर
मंदिर जा सकते हैं। ठीक है,
मुझे
ओके।
एक बात पता लगी है, गर्ग संहिता में
हाँ
इस स्वयं विष्णु भगवान ने कहा कि श्री कृष्ण ही उनसे बड़े हैं।
हाँ गर्ग संहिता में विष्णु जी ने स्वयं कहा है कि कृष्ण उनसे बड़े हैं। हाँ बात सही बात है। ओके तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास, अच्छा संडे को क्लास करेंगे फिर 7:30 बजे। कल भी क्लास हो सकती थी पर कल एक और क्लास है इसी टाइम पे,
सर
तो परसों शाम को हम क्लास करेंगे 7:30 बजे। श्री प्रभुपाद की कथा जो थी वो आधी बची हुई थी, वो परसों हम डिस्कस करेंगे 7:30 पे। ओके, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।